प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्वर में प्रभु का जीव वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी आंखों की
कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
प्रभु का करो जय जयकार, ऊंचे स्थानों में जय जयकार। प्रभु का करो जय जयकार, ऊंचे स्थानों में जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
प्रिय श्रोता, आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा नमस्कार। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। हम आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व कि हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी के लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित महापराक्रमी सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर क्षणों के लिए जो आपने अपनी महान करुणा से हमको दिए हैं कि हम आपके सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए और इसे ग्रहण करने के लिए हमें बुद्धि और समझ प्रदान करने की कृपा करें। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन की सत्यता हमें सिखाएं। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी समस्या में उलझा हुआ है, आप उनकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हां तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में उत्पत्ति की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 22वें अध्याय को आरंभ करेंगे। 22वें अध्याय का शीर्षक है परमेश्वर द्वारा अपने सेवक अब्राहम को उनके इकलौते पुत्र इसहाक को होम बलि करके चढ़ाने की आज्ञा। पिछले कार्यक्रम में हम इसहाक के जन्म के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इसहाक के जन्म के समय अब्राहम की आयु 100 वर्ष थी और सारा की आयु 90 वर्ष थी। निसंदेह इसहाक का जन्म परमेश्वर द्वारा किया गया आश्चर्य कर्म था। श्रोता, इसहाक के जन्म में हम प्रभु यीशु मसीह की पूर्व छाया देखते हैं। परमेश्वर ने एकाएक कुंवारी से प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न नहीं कर दिया। परमेश्वर ने हमें अपने आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करने के लिए पहले से तैयार किया। इस प्रकार के अद्भुत रीति से जन्मे बालकों में यूहन्ना बपतिस्मदाता, शमशून तथा यहां इस अध्याय में इसहाक विशेष उल्लेखनीय हैं। मैं यहां आपका ध्यान इसहाक तथा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कुछ तुलनात्मक बातों पर ले जाना चाहता हूं। सबसे पहली बात हम देखते हैं इसहाक और मसीह यीशु का जन्म परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार था। परमेश्वर ने अपने सेवक अब्राहम और सारा को वचन दिया कि मैं तुझे सारा से एक पुत्र दूंगा, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक के 15वें अध्याय के 4वें पद में पढ़ते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को प्रतिज्ञा दी कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। इस कथन को हम यशायाह नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय के 14वें पद में पढ़ सकते हैं। और जब ये वचन पूरा हुआ तो बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार दोनों का जन्म परमेश्वर की पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। तब दूसरी बात हम देखते हैं दोनों के जन्मों की प्रतिज्ञा तथा उसकी पूर्ति। इन दोनों के मध्य एक लंबा अंतराल था। इसहाक के संबंध में 25 वर्ष के लगभग था तथा प्रभु यीशु मसीह के संबंध में यह अंतराल अनेक वंशावलियों का था और इसका समय लगभग 1000 वर्ष था। तीसरी बात हम देखते हैं कि पुत्र के जन्म की घोषणा जिस प्रकार सारा के लिए हास्यप्रद बात थी, उसी प्रकार मरियम के लिए भी ये हंसी की बात थी। सारा बांझ थी और बालक उत्पन्न करने की आयु को पार कर चुकी थी। मरियम कुंवारी थी, उसने पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था। इस प्रकार इन दोनों के लिए पुत्र की बात या संतान उत्पत्ति की बात हास्यप्रद बात थी। तब चौथी बात यहां पर जो पाई जाती है वह है इसहाक और यीशु दोनों बालकों को उनके जन्म से पूर्व परमेश्वर द्वारा उनके नाम दिए गए। जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक के 18वें अध्याय के 19वें पद में हम इसहाक के विषय में पढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय के 21वें पद में हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि उनका नाम यीशु परमेश्वर की ओर से दिया गया और इसहाक का नाम इसहाक परमेश्वर की ओर से अब्राहम को दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन दोनों बालकों के नाम परमेश्वर के द्वारा दिए गए। पांचवी बात हम इनमें देखते हैं कि दोनों के जन्म परमेश्वर के निर्धारित समय पर हुए। जैसा हम उत्पत्ति की पुस्तक के 21वें अध्याय के 2वें पद में देख चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में भी हम गलातियों की पत्री के 4वें अध्याय के 4वें पद में पढ़ते हैं कि परंतु जब समय पूर्ण हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों के जन्म परमेश्वर के निर्धारित समय पर हुए। तब छठी बात हम पाते हैं दोनों जन्म आश्चर्यजनक जन्म थे, अर्थात इसहाक का जन्म और प्रभु यीशु का जन्म आश्चर्यजनक रूप से हुए जन्म थे। इसहाक का जन्म प्राकृतिक परिस्थितियों के विपरीत था क्योंकि सारा और अब्राहम दोनों ही संतान उत्पन्न करने की दशा में नहीं थे। यीशु के जन्म में भी पुरुष का कोई हाथ नहीं था और यह भी प्राकृतिक परिस्थितियों के विपरीत जन्म था। लूका रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय के 35वें पद के अनुसार यीशु का जन्म परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया। दूसरे शब्दों में ये मरियम और यूसुफ के मिलन के द्वारा नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसहाक और प्रभु यीशु मसीह के जन्म आश्चर्यजनक जन्म थे। तब यहां पर सातवीं बात हम देखते हैं, दोनों ही पुत्र अपने अपने पिता के लिए एक विशिष्ट प्रकार के आनंद का कारण ठहरे। इसहाक का अर्थ है हंसी या वह हंसता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं कि पिता ने स्वर्ग से ये कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस पुत्र से प्रसन्न हूं, और इसहाक का नाम ही हंसी है, वो हंसता है। आठवीं बात हम पाते हैं कि दोनों ही पुत्र अपने अपने पिता के प्रति मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे। उत्पत्ति की पुस्तक के 22वें अध्याय में हम इसहाक की विश्वास योग्यता तथा आज्ञाकारिता के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। वो मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे हैं, बलि चढ़ाए जाने तक वो अपने पिता के लिए विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय के 8वें पद में हमको बताया गया है कि वह अर्थात यीशु यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। श्रोता, इसहाक के जन्म तथा मृत्यु में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म व मृत्यु का अद्भुत चित्र देखते हैं। तब अंत में नवीं बात जो हम देखते हैं, जो इसहाक के जन्म में हम मसीह यीशु के पुनरुत्थान का स्पष्ट चित्र देखते हैं। इसहाक के जन्म में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का चित्र देखते हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर ने सारा के मृतक गर्भ से इसहाक को जन्म दिया, उसी प्रकार परमेश्वर ने अंधेरी कब्र से प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, उनको नया जन्म दिया। और इस प्रकार इसहाक में हम प्रभु यीशु मसीह का चित्र देखते हैं। यदि आप इसहाक के जन्म पर विश्वास कर सकते हैं कि इसहाक का जन्म सारा के मृतक गर्भ से हुआ, तो आप इस बात पर भी विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे। यदि आप इसहाक के जन्म पर विश्वास कर सकते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 22वां अध्याय प्रभु के सेवक अब्राहम के इकलौते पुत्र इसहाक के बलिदान से आरंभ होकर अब्राहम से परमेश्वर की आशीषों की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त होता है। क्या परमेश्वर के सेवक अब्राहम ने वास्तव में इसहाक का बलिदान किया? आइए हम इसी प्रश्न के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। स्वाई हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका प्रथम अध्याय प्रथम पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। मित्रवर, यहां परीक्षा से क्या तात्पर्य है? परीक्षा से तात्पर्य है जांच या परख, परमेश्वर द्वारा अब्राहम को जांचा जाना या परखा जाना। परमेश्वर ने अपने सेवक इब्राहिम के विश्वास को परखा, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेता। याकूब की पत्री के प्रथम अध्याय के 13वें पद में हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेता, किंतु परमेश्वर हमको परखता है, हमको जांचता है। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखा और एक अत्यंत विचित्र कार्य करने को उससे कहा। 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मित्रवर, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्रेम करता है उसे होम बलि करके चढ़ाना। होम बलि ये वो बलिदान है जिसमें मानव का बलिदान चढ़ाया जाता है। फिलिस्तीनी मोलेक देवता के आगे मानव बलि चढ़ाया करते थे। प्रतिमा पूजक संसार ऐसी ही बलि चढ़ाते थे। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ये कार्य उचित है? यदि आप प्रभु के सेवक अब्राहम से पूछें तो वो भी इसे गलत ही बताएंगे। वो ये कहेंगे कि हां, मानव बलि करना गलत काम है, किंतु वो कहेंगे कि ये मेरे परमेश्वर की आज्ञा है और उसने मुझे कभी ऐसा कुछ करने को नहीं दिया जो उत्तम ना हो, अच्छा ना हो। और परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास होने के कारण अब्राहम अपने पुत्र को लेकर मोरिया नामक स्थान को चल देते हैं। ये वही पहाड़ी स्थान है जहां प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया। 3-8 पदों में हम पढ़ते हैं, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं पर ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? मित्रवर, प्रभु के दास अब्राहम पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने को मोरिया नामक स्थान की ओर चल पड़े हैं। इसहाक के पूछने पर कि मेमना कहां है, प्रभु के दास अब्राहम ने कहा कि मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं करेगा। और वास्तव में परमेश्वर ने मेमने का प्रबंध किया, किंतु मेमने का नहीं वरन मेढ़े का। परमेश्वर ने मेढ़े का प्रबंध किया, जैसा कि हम 13वें पद में पढ़ सकते हैं जहां लिखा है, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। मित्रवर, यहां मेमने और मेढ़े में अंतर है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेमना प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय के 29वें पद में बताता है कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। मित्र, परमेश्वर स्वयं होम बलि के मेमने का प्रबंध करेगा। मेरे प्रिय मित्र, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने इस मेमने का प्रबंध किया। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जिसने मेरे और आपके पापों के स्थान पर अपना बलिदान दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेढ़ा इसहाक के स्थान पर बलिदान हुआ। तब 9वें पद से आगे हम देखें यहां इस प्रकार से लिखा है, वरन 8वें पद को भी देखिए यहां लिखा है, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बझा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की जगह पर होम बलि करके चढ़ाया। मित्र, ये परमेश्वर है जो प्रबंध करने वाला है। इसी ने मेरी और आपकी मुक्ति का प्रबंध किया है। असंभव को संभव परमेश्वर ने किया है। मेरा और आपका उद्धार एक असंभव कार्य है। हम किसी भी प्रकार से अपने किसी भी कार्य के द्वारा अपनी मोक्ष के लिए संतुष्ट नहीं हो सकते, किंतु परमेश्वर ने इस असंभव कार्य को संभव किया है। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को, अपने शिष्यों को बताते हैं कि जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर ने इस कार्य को विश्वास द्वारा अनुग्रह से संभव किया है। पवित्र बाइबल हमको बताती है कि विश्वास द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है। ये तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं, कि ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के समक्ष घमंड करो। अग्रिम पदों में हम देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं अब्राहम की विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम की साक्षी देता है और अपनी प्रतिज्ञा को पुनः पक्का करता है। आइए मेरे साथ देखिए, 14वें पद में लिखा है, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और इब्राहिम बेरशेबा में रहता रहा। मेरे मित्र, यह मेरा प्रश्न है कि क्या परमेश्वर के सेवक अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान किया? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने 13वें पद में पढ़ लिया कि अब्राहम ने उसके स्थान पर मेढ़ा बलि किया। फिर यहां पर परमेश्वर का वचन हमको एक बात बताता है। परमेश्वर कहता है कि तूने ये काम किया। श्रोता, आप जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को देखता है, गुप्त बातों का भी ज्ञान रखता है। यद्यपि अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम ने सच्चे हृदय से बिना किसी भय और दबाव व संदेह के अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान के लिए अर्पित कर दिया और परमेश्वर ने अपने सेवक की इच्छा को जान लिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तूने ये काम किया, अर्थात तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। श्रोता, पवित्र बाइबल बताती है कि अब्राहम का ये विश्वास उनकी धार्मिकता गिना गया। अब्राहम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए गए, किंतु वह मनुष्य के सामने अपने कार्यों से धर्मी सिद्ध हुए। अब्राहम का विश्वास आज्ञाकारिता के साथ था और इसलिए परमेश्वर ने शपथ खाकर उन्हें आशीष दी। 17 और 18 पदों में यहां लिखा हुआ है कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। श्रोता, तेरे वंशज से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर प्रेरित पौलुस हमें गलातियों की पत्री के तीसरे अध्याय के 16वें पद में देते हैं। वहां लिखते हैं, इसलिए प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसके वंशज से की गई हैं। ये संकेत बहुतों की ओर नहीं वरन एक ही की ओर है, तेरे वंशज से जो मसीह है। प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के वंशज हैं और परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा समस्त संसार को आशीष दी है। गलातियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय के 8वें पद में वो बताते हैं, और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से ये जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया, समस्त जातियां तुझमें आशीष पाएंगी। श्रोता, जिस समय परमेश्वर ने अपने सेवक अब्राहम को आज्ञा दी वह अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर बलिदान करे, परमेश्वर ने उसी समय उसे सुसमाचार सुना दिया, तेरे वंशज के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। वह वंशज प्रभु यीशु मसीह है। यही वो सुसमाचार है जो परमेश्वर ने अपने सेवक अब्राहम को सुनाया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप निश्चित रूप से अब्राहम के वंशज परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में ग्रहण करेगा क्योंकि आप शरीर की इच्छा से नहीं वरन जल और आत्मा से जन्म प्राप्त करेंगे, अर्थात आप परमेश्वर की आत्मिक संतान बन जाएंगे। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।